महाराज कृष्ण रसगोत्रा 94 साल के हैं, लेकिन उनकी याददाश्त हाथी की तरह है। पिछले 70 साल की सभी घटनाएं उनके अंतर्मन में इस तरह गुथी हुई हैं जैसे अभी कल ही की बात हो। कुछ मामलों में रसगोत्रा भाग्यशाली भी रहे हैं, वरना किसको इतनी नजदीक से जवाहरलाल नेहरू, जॉन एफ कैनेडी, इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर जैसी हस्तियों को देखने का मौका मिलता है। 1949 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रसगोत्रा की शुरुआती पोस्टिंग थी असिस्टेंट चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के तौर पर। उस जमाने में कनाडा के एक मंत्री क्लेरेंस हो भारत आए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्हें अपने साथ पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का शास्त्रीय गायन सुनवाने आकाशवाणी के सभागार ले गए।
पंडित जी ने यह सजेशन दी थी कि भाई इनको कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से भी इनको कुछ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो छोटा सा एक ऑडियंस ये था हॉल वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में, अब भी है शायद। तो उन्होंने गाना शुरू किया, पंडित जी और वो कनेडियन मंत्री पहली कतार में बैठे थे, उनके पीछे मैं बैठा था और पंडित जी उसको समझा रहे थे कि ये अब इसका आलाप है, इसका क्या मतलब होता है, ये राग इस टाइम का है, इसका नाम क्या है। और ये ओंकारनाथ ठाकुर जो हैं बेहतरीन म्यूजिशियन इंडिया के क्लासिकल सिंगर हैं इस वक्त, और ठाकुर जी अपने आलाप में लगे हुए थे तो वो डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने एकदम इशारा किया बंद, गाना बंद कर दिया। पंडित जी समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। पंडित जी ने ओंकारनाथ ठाकुर से पूछा कि ओंकारनाथ जी ये आपने बंद क्यों कर दिया इसे। उन्होंने कहा बड़े तपाक से, उन्होंने हंस के मुस्करा के थोड़ा आयरनी से कि आप पहले अपनी बातचीत ख़त्म कर लीजिए तो मैं गाऊँ। अब पंडित जी का मुंह उस वक्त देखने लायक था, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो बहुत एक बड़े भले आदमी का। ओ पंडित जी माफ़ कीजिएगा, मैं इनको बता रहा था कि ये राग क्या है, ये कैसे है, अब मैं चुप रहूँगा, आप प्लीज़ गाइए।
कवि हरिवंश राय बच्चन की रसगोत्रा से गहरी दोस्ती थी। 1955 में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गर्मियों की छुट्टियां हुई तो उन्होंने बच्चन को सपरिवार काठमांडू आमंत्रित किया, जहां वो भारतीय दूतावास में सेकंड सेक्रेटरी के तौर पर तैनात थे। इस यात्रा के दौरान बच्चन ने कई कवि सम्मेलनों में भाग लिया।
मेरे घर में रोज बैठक होती थी उनकी, तो वो रात रात बहुत बैठे वहाँ, 1 बजे तक 2 बजे तक रोज बैठक होती थी इनकी। और एक तो इनका बच्चन जी का रिसाइटल निशा निमंत्रण द कॉल ऑफ द नाइट 9, 9:30, 10 बजे उन्होंने शुरू किया और कुछ इंटरवल करते करते 100 कविताएं हैं उसमें, सब उन्होंने रिसाइट की। ये अमिताभ और बंटी छोटे जो हैं अजिताभ, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, इनको हम खिलाते वाते थे, वहाँ घुमाते थे फिर आते थे। तेजी तो कमाल की औरत थी, वो क्या उनकी आवाज़, जो बच्चन जी का रिसाइटल उनकी जुबान से जो हमने सुने हैं।
दे रही कितना दिलासा आज रोके से जरा सा चांदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है रात यादी हो गई है।
1960 में रूस के नेता ख्रुश्चेव ने दुनिया के चोटी के नेताओं को उस समय के महत्वपूर्ण मामलों पर मंत्रणा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आमंत्रित किया। उसी बैठक में रसगोत्रा उस दृश्य के गवाह बने जिसकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। हुआ ये कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरल्ड मैकमिलन अपने भाषण में सोवियत संघ पर कटाक्ष कर रहे थे तो ख्रुश्चेव ने अपना जूता निकालकर उसे मेज पर 3 या 4 बार बजाया।
एक दिन मैकमिलन ने बोलना था और मैकमिलन वैसे ही वो इंडियन उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने उसको देखा हुआ था, ड्रामा करता था, उसकी आदत थी ये, वो जेस्चर्स और पॉजेस थिएट्रिकल। और अगले दिन वही थिएटर उस शख्स ने किया, बात बात पर ताना मॉस्को पे ख्रुश्चेव पर, और उसको हिदायत के बर्लिन में कुछ गलत बात मत करना, उसके नतीजे बहुत ख़राब निकलेंगे। वो बेचारा बैठा सुन रहा था शरीर, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने जूता निकाल के ठक 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 अपने डेस्क पर मारा। कम्युनिस्ट वर्कर था, फैक्ट्री वर्कर था, वो अपने काम की वजह से ऊपर उठ के वहाँ लीडरशिप रोल में आया, उसने अपना गुस्सा दिखा दिया।
А почему же этот халуй американского империализма выступает?
मैकमिलन के भाषण के बाद जैसे ही सारे शासनाध्यक्ष हॉल से बाहर निकलने लगे, रूसी प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य दौड़ता हुआ रस्कोत्रा के पास ये कहने आया कि ख्रुश्चेव नेहरू से कुछ बात करना चाहते हैं।
मेरा तो इरादा अंदर जाने का नहीं था उनके रेजिडेंस में, लेकिन जवाहरलाल जी एक बड़े पुरसपाक प्यारे शख्स थे, अपने नौजवान लोगों को तो खास तौर पर बड़े प्यार से देखते थे। मुझे उन्होंने कहा कि तू भी चल और हाथ पकड़ के आ जाओ, तो चले गए। वहाँ एक कमरे में एक टेबल पर वो बहुत से खाने का सामान लगा है, एक दूसरी टेबल पर वो कुछ वोडका की बोतल लगी हैं, कुछ वाइन्स थे, कुछ जूसेस भी थे। तो ख्रुश्चेव साहब ने 3 गिलास उन्होंने वोडका के भरने शुरू किए, छोटा गिलास होता है ना, वो तो नीट पीते हैं इन लोगों को। तो उसने पहला गिलास तो पंडित जी खुद दिया, दूसरा उठा के मेरे हाथ, तो मैं ज़रा झिझक के पीछे हो गया। तो जवाहरलाल जी ने खुद मुझे कहा कि देखो अगर पीते हो तो ले लो। तो अब मैं पीता तो हूँ, मैं कहा तो मैंने ले लिया। अब पंडित जी ने तो उसको धीरे धीरे सिप करना शुरू किया, उनकी देखा देखी मैंने भी धीरे 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 सिप करना शुरू किया। अब वो ख्रुश्चेव मेरी तरफ देख, फिर पंडित जी की तरफ नहीं मेरी तरफ देख रहा, और वो पंडित जी को एड्रेस करके कहता है देखिए साहब मॉस्को में मैं एक नौजवान को ये गिलास भर के दूँ तो वो इंतज़ार नहीं करता कि मैं अपना गिलास भी भर लूँ, वो तो उसको यूं करता। देन ही सेड टू मी अरे भाई ए पियो इसको। साहब जैसे वो उन्होंने डाला गले में गिलास छोटा, मैंने भी डाल दिया, तो जल्दी से उन्होंने दूसरे गिलास भर दिए। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, तो मैंने घड़ी वड़ी देखी, 45-40 मिनट ज़्यादा घंटे करीब हो गया था बातचीत में, बातचीत उनकी बहुत अच्छी हुई। अब मैं अपना दिल थामे हुए हूँ कि पंडित जी क्या कहेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा अरे भाई तुम ठीक हो ना, और भी टेस्ट भी किया मुझे कि मैं ठीक हूँ, उसमें मैं पास हो गया था।
रस्कोत्रा ने अपनी किताब में एक बड़ा खुलासा किया है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जब अमरीकी इंटेलिजेंस को पता लगा कि चीन परमाणु परीक्षण करने वाला है, तो कैनेडी ने अपने हाथ से नेहरू को पत्र लिखा कि अमरीका चीन से पहले भारत को परमाणु परीक्षण में मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन नेहरू ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया।
उनका आर्गुमेंट ये था कि अगर एशिया में कोई न्यूक्लियर बम टेस्ट करने वाला है कैनेडी का, तो वो भारत की डेमोक्रेसी होना चाहिए। उनको भांप लगी थी कि चीन करने वाला है, तो वो चाहते थे कि अगर ये पावर डिस्प्ले होनी है एशिया में तो एक डेमोक्रेसी करे, वो डेमोक्रेसी कौन सी है, भारत। तो उन्होंने ऑफर किया पंडित जी को कि राजस्थान में एक पिलर बना के उसके ऊपर वो एक बम हमें दे देंगे जो हम विस्फोट जिसका कर दें तो दुनिया पे खुल जाएगी, भारत भी कोई चीज़ है भाई, अब चीन करते फिर उसके बाद वो फीका हो जाएगा उनका वो काम। पंडित जी का रिएक्शन पॉजिटिव था, उन्होंने भाभा को बुलाया मुंबई से। उसी दिन शायद जी पार्थासारथी चीन से वापस लौटे, पार्थासारथी जी का रुझान वो उसके खिलाफ था इस चीज़ के। फॉरेन पॉलिसी में अक्सर होता है इश्यूज जो होते हैं ना, लोग एक प्रॉब्लम के जो तरीका है हल करने का उसके आदि हो जाते हैं, उस आदत से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनका यही कि नहीं साहब ये तो न्यूक्लियर डेंजर है, न्यूक्लियर चीज़ ही ख़राब है, बम हम तो नॉन वायलेंट फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। ये आर्गुमेंट ये है कि साहब ये रूसियों को पता चल जाएगा, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, अगर वो हमने मान लिया होता चीन कभी भारत पे हमला नहीं करता, 65 की जंग नहीं होती, 71 की भी जंग नहीं होती।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमरीका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने बदसलूकी का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हुए इंदिरा गांधी को बैठक से पहले 45 मिनट तक इंतजार कराया। मैंने एमके रस्कोत्रा से पूछा आप वहां मौजूद थे, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था?
हुआ है, मेरे ख्याल में निक्सन के अलावा और कोई राष्ट्रपति ये करेगा नहीं।
पूरा बताइए कि उन्होंने कारण क्या बताया?
कारण मतलब
मुलाकात फिक्स थी, आप लोग वहां जाके बैठे हुए थे,
बिल्कुल
वो निकले ही नहीं
और नहीं वो कुछ कर भी नहीं रहे अंदर, ये दोनों बैठे हैं हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट निक्सन, और तहैया क्या है कि इस लेडी को जरा दिखाएं कि इसकी जगह क्या है, इंसल्ट करना था ना उसको। तो बातचीत शुरू से ही कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। पहली जो मुलाकात होती है उनके लॉन में, उसमें निक्सन ने बिहार में कहीं फैमन हुआ था थोड़ा, उसका जिक्र किया और कहा कि उसके लिए हम इतनी एड दे रहे हैं, यहाँ जो 10 लाख 8 लाख 10 लाख बंगाली हमारे यहाँ पहुँच गए थे कैंप्स में, भूखे मर रहे हैं, हम पे जो बोझ हैं उसका कोई जिक्र नहीं किया। इनको कुछ शक था कि ये तो जंग का ऐलान करने आए हैं और हम इसको दिखाएंगे कि ये ठीक नहीं है, तो ये बदतमीजी का बदसलूकी थी, डिलिबरेट थी।
और जब फाइनली बैठक हुई तब मिसेस गांधी का रिस्पॉन्स क्या था?
शी इग्नोर्ड ऑल दिस, बड़ी डिग्निफाइड लेडी थी वो, उसने जो अपना कहना था वो कह दिया। वो मैसेज उसका ये था कि आप इसको बंद करवा सकते हैं या खान को, ये जो चल रहा है कत्लेआम वहाँ चल रहा है बांग्लादेश में, इसको आप बंद करवाइए, और ये रेफ्यूजी जो सारे हैं ये वापस जाएंगे उस मुल्क में, हमारे मुल्क में इनके लिए जगह नहीं है।
80 के दशक में रूस ने अत्याधुनिक विमान MiG-29 बनाया था। वो इस बात को इस हद तक गुप्त रख रहे थे कि उन्होंने उसके अस्तित्व तक को नकार दिया। रस्गोत्रा उस बैठक में मौजूद थे जहाँ ये तय किया गया कि रूस भारत को MiG-29 विमान देगा।
वो वहाँ बैंक्वेट था मॉस्को में, बैठे थे, वही तो होस्ट थे। मिसेस गांधी से मेरी बातचीत होती रहती थी कि किसी, उन्होंने कहा हुआ था कि देखना कुछ इस मामले में हो सकता है कि नहीं। जब ये ऐसी मीटिंग्स में कुछ एक वक्फा आ जाता है कि कुछ बातचीत नहीं हो रही, मैंने उसका मौके को पकड़ा। डिफेंस मिनिस्टर जो उनका था वो मेरे अपोजिट टेबल पर बैठा हुआ था, तो मैंने उसको एड्रेस किया कि साहब आपके पास एक प्लेन है, मैंने कहीं इसका अकाउंट देखा है ये किसी अमेरिकन जर्नल में, हम चाहते हैं आप हमें सभी हथियार आपसे हम लेते हैं, आप देते नहीं हैं, तो उसका कुछ होना चाहिए, हल होना चाहिए। उसका ट्रांसलेशन हुआ तो मैंने यही रिपीट किया उसको। ब्रेजनेव कुछ सुन रहा था, उसने कहता वो लाउडली सेज हे, उस्टिनोव को कहता है व्हाट इज ही सेइंग, तो उस्टिनोव ने फिर उसको बताया कि ये कह रहा है। Then do we have the plane or do we not have the plane? उसने कहा जी है तो सही, पहले तो deny कर रहे थे कि है ही नहीं, लेकिन number काफ़ी नहीं हैं और अभी trial भी चल रहे हैं। तो उसने कहा कि number काफ़ी नहीं है, क्या बात है, उनको जो चाहिए तो दो उनको। बात हो गई, फैसला हो गया। मेरा ये निष्कर्ष जो मैंने अपने करियर से निकाला है कि किसी इख्तलाफ राय है आप या किसी आपने कुछ लेना है तो कन्फ्रंटेशन की बात मत की, मौका देख के थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, कोई ह्यूमर कोई उस सिचुएशन में है तो उसको सामने लाइए। कई मौक़ों पर ऐसे मैंने इख्तलाफ राय को अलहदा रख कर तो उससे हल निकल आते हैं। डिप्लोमेसी में ह्यूमर का एक बड़ा रोल है।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।